दीवा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो हॉस्पिटल नहीं गई थी। आर्यांश ने उसकी अच्छी खासी केयर की थी। खाना हो जाने के बाद आर्यांश दीवा को उठाकर बाथरूम में नहलाने के लिए लेकर गया। दीवा की सर्जरी का निशान देखकर आर्यांश का दिल दर्द से पिघलने लगा था। आर्यांश खुद बाथटब से बाहर निकल आया था। उसने दीवा को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बल्कि उसकी बहुत अच्छे से अडोर किया, जैसे किसी स्पा में किया जाता है। आर्यांश का ये रूप देखकर दीवा को बहुत हैरानी हुई। दीवा को अच्छे से नहलाने के बाद आर्यांश ने उसे अपने हाथों से टॉवल लेकर क्लीन किया और फिर बाथरूम पहनाया। दीवा को इन सब में इतनी शर्म आ रही थी कि वो नज़रें उठाकर तक नहीं देख रही थी। आर्यांश, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, दीवा ने उसे रोकना चाहा, पर आर्यांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बाथरूम पहनने के बाद आर्यांश उसे वापस अपने कमरे में लेकर आया और फिर ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठा दिया था। उसने हेयर ड्रायर निकाला और दीवा के बालों को सॉफ्टली सुखाने लगा। वो बिल्कुल किसी लविंग हस्बैंड की तरह रिएक्ट कर रहा था। दीवा के मन में इस वक्त यही ख्याल चल रहा था कि अगर आर्यांश पहले दिन ही उसके साथ इतना प्यार से पेश आता तो अब तक वो उसके प्यार में पड़ चुकी होती। वो दिखने में हैंडसम था और जब उसका मूड अच्छा होता था तो वो काफ़ी प्यार से पेश आता था। दीवा ने एक नज़र खुद को आईने में देखा। आर्यांश उसके बालों को प्यार से सुखाने में लगा हुआ था। अचानक दीवा के दिमाग में वो याद ताज़ा हो गई जब वो पहली बार आर्यांश के घर पर आई थी। तब वो किसी और लड़की के ऐसे ही बाल सुखा रहा था। इन सब से दीवा का मन कड़वाहट से भर गया था। दीवा ने कांपते हाथों से आर्यांश का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें मेरे इतने छोटे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ तो खुद कर सकती हूँ। दीवा का चेहरा उदास लग रहा था। उसकी आंखें उसके दिल का हाल बखूबी बयां कर रही थीं। चुपचाप बैठी रहो, आर्यांश ने सख्ती से कहा। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, खुद कर सकती हूँ, दीवा ने उसी कड़वाहट के साथ जवाब दिया। दीवा ने उसके हाथ से हेयर ड्रायर लेने की कोशिश की, लेकिन आर्यांश ने उसकी तरफ घूरकर देखना शुरू कर दिया। न जाने क्यों दीवा को अच्छा नहीं लग रहा था कि आर्यांश का ये सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ उसके लिए नहीं था। मैंने कहा हिलो मत, आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा। बाथरूम में जब आर्यांश बाथटब में आया था तब उसके बाल भी गीले हो गए थे। दीवा ने उसे टालते हुए कहा, तुम्हारे बाल भी गीले हैं, पहले तुम अपने बाल सुखा लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। मेरा बीमार होना चलता है क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, लेकिन तुम इतनी बड़ी कंपनी के CEO हो। मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं हूँ जो मुझे इतनी आसानी से ठंड लग जाएगी, आर्यांश बोला। हाँ, मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे भी आसानी से बुखार नहीं होता है। कल रात कैसे हो गया था मुझे नहीं पता, दीवा ने हल्के गुस्से में जवाब दिया। उसके दिल की जलन वो चाहकर भी नहीं छुपा पा रही थी। दीवा उठकर जाने को हुई तभी आर्यांश ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब सीधे सीधे बताओगी आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं है, दीवा ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो उससे नजरें चुरा रही थी। कोई बात नहीं है तो तुम अचानक गुस्सा क्यों हो गई? मैं सब कुछ प्यार से हैंडल कर रहा हूँ तो तुम्हें नखरे दिखाने हैं। अब चुपचाप बताओ आखिर किस बात की जलन हो रही है तुम्हें, आर्यांश ने भौहें उठाकर पूछा। वो तुमने उस दिन कियाना के बाल भी सुखाए थे, दीवा ने मुंह बनाकर कहा। उसका जवाब सुनकर अचानक आर्यांश के चेहरे पर जेन्युइन हल्की स्माइल आ गई थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा तो तुम्हें कियाना से जलन हो रही है? मुझे किसी से जलन नहीं हो रही है, दीवा ने झट से कहा। वो इस बात से कितना भी इनकार कर ले, लेकिन उसके बर्ताव से ही जाहिर हो रहा था कि उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि आर्यांश उस दिन किसी और के करीब था। अचानक आर्यांश ने दीवा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, खुद को किसी के साथ भी कंपेयर मत करो, तुम मेरी वाइफ हो, मेरे बेडरूम तक पहुंचने वाली पहली लड़की, तुम बहुत खास हो, तो हर किसी के साथ खुद की तुलना करके खुद को नीचे मत गिराओ। इस बार दीवा ने उसे अपनी पत्नी कहने पर टोका नहीं। पता नहीं आर्यांश बार बार उसे अपनी पत्नी कहकर क्यों बुलाता था, जबकि उनका रिश्ता तो सिर्फ 2 महीने का ही था, जिनमें से काफी टाइम बीत चुका था, बस थोड़ा ही टाइम बचा था। दीवा को नाइट ड्रेस देने के बाद आर्यांश चेंज करने के लिए वार्डरोब में चला गया था। उसके दिमाग में इस वक्त दीवा का चेहरा चल रहा था जब वो कियाना से जल रही थी। तो तुम्हें कियाना से जलन हो रही है, तुम्हारे दिल में जलन देखकर अच्छा लग रहा है, जबकि वो तो मेरी एक फ्रेंड के अलावा और कुछ नहीं है। अगर उसके डैड के साथ फैमिली रिलेशन नहीं होते तो उसे मेरे घर में आने की परमिशन भी नहीं होती, आर्यांश ने मन ही मन कहा। आर्यांश और कियाना के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था, फिर भी आर्यांश ने जानबूझकर दीवा को कुछ नहीं बताया। चेंज करने के बाद वो वापस कमरे में आया। उसे देखकर दीवा को एक पल के लिए लगा कि आज की रात फिर से उसके लिए मुश्किल भरी बीतने वाली है। तभी आर्यांश ने कहा, चलो अब मेडिसिन लो और आराम करो, ज्यादा देर जागने की जरूरत नहीं है। दीवा ने उसकी बात पर सिर हिलाया, दवाई लेने के बाद वो बेड पर लेट गई। आर्यांश उससे थोड़ा दूर लेटा हुआ उसके बालों को धीरे धीरे सहला रहा था। उस रात को भी दीवा को बुरे सपने आ रहे थे, तो वो बार बार नींद में उठ रही थी। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब वो आर्यांश के करीब जाकर लेट गई थी। दीवा का ध्यान रखने के चलते आर्यांश भी नहीं सोया था। देर रात के करीब जब आर्यांश को लगा कि दीवा अब बुरे सपनों से परेशान नहीं हो रही है, तभी उसने कुछ देर नींद ली। अगली सुबह जब दीवा की आंख खुली तो आर्यांश उसके करीब बिल्कुल सुकून से सोया हुआ था। एक शांत खूबसूरत सा चेहरा जिसे जितनी देर भी देखो कम ही लगता था। बस कुछ दिन तुम्हारे साथ और बिताने हैं, मॉम ने मुझे ब्लाइंड डेट का कहा था। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? अगर तुम्हें पता चला तो ना जाने तुम कैसे रिएक्ट करोगी, दीवा ने मन ही मन कहा। उसके लिए उस डेट पर आर्यांश से छुपकर जाना आसान नहीं था। आर्यांश दिखने में बहुत अट्रैक्टिव था। दीवा जब छोटी थी तब वो एक हैंडसम पति को ही चाहती थी, लेकिन बड़े होने पर उसे समझ आया कि खूबसूरत चेहरा ही काफी नहीं होता है, प्यार और सुरक्षा भी मायने रखती है। दीवा आर्यांश को खोई हुई निगाहों से देख रही थी कि तभी आर्यांश ने बंद आंखों से कहा, मैं बहुत हैंडसम हूं ना? आर्यांश की आंखें बंद थी, उसे लगा वो नींद में बोल रहा है, तो दीवा ने भी शांत होकर अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का दिखावा करने लगी। दीवा के दिल की धड़कन इस वक्त तेज हो रही थी। अचानक आर्यांश उसके ऊपर आ गया था, फिर भी दीवा ने आंखें नहीं खोली। वो देखना चाहती थी कि आर्यांश क्या करना चाहता है। अगले ही पल आर्यांश ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे। दीवा ने कसकर अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया था, लेकिन आर्यांश ने उसे किस करना जारी रखा। दीवा के गाल लाल हो रहे थे और वो उसे किस करते हुए इतना डूब गया था कि उसके हाथ दीवा की कमर पर चलने लगे थे। इससे पहले कि आर्यांश का हाथ उसके कमर से नीचे जाता, दीवा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने जल्दी से आर्यांश के होठों से खुद को आजाद करवाया और प्लीडिंग वॉइस में कहा, अरे नहीं, अभी कुछ मत करो, तुम्हें ऑफिस जाने में लेट हो जाएगी। क्या ना करूं? आर्यांश ने उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर पूछा। तुम्हें देर हो रही होगी, ऑफिस जाना है ना, कल भी तुम मेरे चक्कर में नहीं जा पाए थे, दीवा ने हड़बड़ाहट में कहा। अच्छा, और मैं अगर देर से गया तो क्या मेरा बॉस मुझे डांटेगा? मेरी कंपनी में अगर मैं देर से गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर्यांश ने सिर हिलाकर जवाब दिया।
नहीं, मुझे खुद के लिए डर लग रहा है, अगर मैं देर हो गई तो मुझे डांट पड़ेगी, दीवा ने कहा। आर्यांश के सवालों का जवाब देना उसके लिए सच में बहुत मुश्किल होता था, चाहे वो गुस्से में कुछ पूछे या फिर उसे परेशान करते हुए। उसका जवाब सुनकर आर्यांश ने उसकी तरफ घूर कर देखा। उसके मन में यही ख्याल आया कि इस लड़की को काम की ज्यादा परवाह है, जबकि वो इतने प्यार से उसके करीब आ रहा था। आर्यांश तुरंत दीवा के ऊपर से उठ गया था। उसने देखा दीवा की तबीयत अब पूरी तरह सही थी, तो वो बोला, आज शाम जल्दी घर आ जाना, मैं चाहता हूँ कि आज का डिनर तुम मेरे लिए बनाओ। ठीक है, दीवा ने बिना किसी बहस के उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। आर्यांश ने महसूस किया कि दीवा उसके साथ रहते हुए काफी समझदार हो गई थी। अब वो छोटी बातों के लिए बहस नहीं करती थी, पर अभी भी उसे दीवा पर पूरी तरह यकीन नहीं था। कभी कभी वो बिल्कुल तेज तरार हो जाती थी तो कभी बिल्कुल मासूम लगती थी। नाश्ता करने के बाद दीवा और आर्यांश अपने अपने काम पर निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ इम्पीरियल हाईस्कूल में इनाया की आइडेंटिटी सबके सामने आ गई थी। पहले तो मामला समय सर ने दबा दिया था, लेकिन आज अचानक से ही फिर से सब उसके बारे में बात करने लगे। न जाने किसने स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर इनाया के माँ बाप की फ़ोटोज़ अपलोड कर दी थी और साथ ही कुछ आर्टिकल्स भी जिनमें उनके बारे में बुरा भला लिखा हुआ था। हालांकि समय ने फ़ोटोज़ हटवा दी थी, लेकिन आजकल के टाइम में चीज़ें वायरल होते देर नहीं लगती थीं। उन्होंने ये तक पता लगा लिया था कि वो फ़ोटो कहाँ से अपलोड हुई थी, लेकिन वो एक साइबर कैफ़े होने की वजह से उन्हें पता नहीं चला कि एग्जैक्टली ये काम किसका था। समय बिना दीवा को प्रॉब्लम में डाले ये मामला खुद ही संभाल रहे थे, लेकिन बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और आज इनाया स्कूल में बेहोश हो गई थी। समय उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल आया। वहीं दीवा अपना काम निपटाकर आर्यांश के कहे मुताबिक हॉस्पिटल से निकलने ही वाली थी कि उसके पास समय का कॉल आया। आई होप कि तुम हॉस्पिटल में ही हो, क्योंकि इनाया ठीक नहीं है, शी नीड्स यू, उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इनाया के बीमार होने की खबर सुनकर दीवा आर्यांश को पूरी तरह भूल चुकी थी और वो दौड़ते हुए जनरल वार्ड की तरफ जाने लगी। शायद ये अब उसके लिए आम हो चुका था कि जब भी आर्यांश उसे जल्दी आने को कहता, कुछ ना कुछ होने पर वो घर नहीं पहुंच पाती थी। दीवा ने सोचा कि वो इनाया से मिलकर घर चली जाएगी ताकि आर्यांश गुस्सा ना हो। सिस्टर लीजा, क्या हुआ है मेरी बहन को? दीवा ने जनरल वार्ड में पहुंचते ही सबसे पहले पूछा। मैं आपके पास आने ही वाली थी, डॉक्टर ने बताया कि आपकी बहन स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई है, उसे सलाइन चढ़ाया जा रहा है, जब तक वो यहाँ है आप उसके पास रहेंगी तो उसे इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, सिस्टर ने बताया। दीवा उलझन में फंस गई थी। बहुत उम्मीद के साथ आर्यांश ने उसे घर आने को कहा था, लेकिन वो इस हाल में इनाया को भी नहीं छोड़ सकती थी। दीवा ने परेशान चेहरे के साथ सिर हिलाया और आर्यांश के पास जाने के बजाय इनाया के पास चली गई। देखते हैं दीवा के इस डिसीजन का क्या नतीजा निकलता है।